वंदे हम श्री गुरु श्री तपदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगणा भगनाथान्वितं तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले सुमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पुजारिणे मृगशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मुझे एक चीज पूछना था कि ये वाली क्लास दोपहर में 11:30 बजे की बजाय रात में 8 बजे करना कैसा रहेगा, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है और कई बार भक्त लोग भूल जाते हैं क्लास का टाइम, और ये टाइम थोड़ा थोड़ा टफ भी है क्योंकि वेदर में बहुत गर्मी होती है। तो इस टाइम की बजाय रात में 8 बजे अगर करेंगे तो ठीक रहेगा। कितने लोग तैयार हैं उसके लिए? दिव्यराजपूत तो मुझे तैयार दिख रहे हैं, बहुत दिन बाद उनके चेहरे का दर्शन हो रहा है। ओके, शिवानंदपुर भी तैयार है, कृष्णापुर भी तैयार है, शिवमपुर भी तैयार है। तो नेक्स्ट वीक से इसको शाम को 8 8 से 9 के बीच में करेंगे। दीप्ति माता जी, आपका 9 रात में 8 बजे करने में कोई समस्या तो नहीं है?
नहीं प्रभु जी। हाँ
ये वाले टाइम से ज्यादा अच्छा रहेगा 8 बजे,
प्रभु जी।
ठीक है? अगले हफ्ते से रात में 8 बजे करेंगे। तो शिवम प्रभु, आप भी नेक्स्ट वीक का जो पोस्टर बनाएंगे ना, उसमें 8 टाइम चेंज कर दीजिएगा। ओके,
जी प्रभु।
आज हम भगवद गीता का, हमने लास्ट वीक कंप्लीट किया था 6वें अध्याय का 43 42 नंबर श्लोक, 42 तक कंप्लीट किया था। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ। 42 से ही हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि सीक्वेंस क्लियर रहेगा कौन सा थीम चल रहा है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कुछ श्लोकों के पहले कि हाँ, ये वाला प्रश्न था 38 नंबर श्लोक में, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो भगवान को जब अर्जुन ने पूछा था कि माइंड कंट्रोल कैसे करना है, माइंड कंट्रोल करना बहुत कठिन है, तो भगवान ने भी बताया कि कंट्रोल किया जा सकता है परंतु कठिन है, अभ्यास और वैराग्य से किया जाता है परंतु तब भी कठिन है। तो अर्जुन को ये प्रश्न आया था कि अगर इतना कठिन है तो अगर मैं प्रारंभ करूंगा इस रास्ते पे चलना तो हम लास्ट तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं, इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि अगर कोई पूरा नहीं कर पाता है तो उसका क्या होता है। और उसका उत्तर भगवान ने फिर देना प्रारंभ किया था 40 नंबर श्लोक से। पहले उस श्लोक में भगवान ने सांत्वना पहुंचाई थी कि ना पार्थ नैवेह नामुत्थ विनाशस्तस्य विद्यते, इस उपाय में कभी भी किसी भी समय विनाश की कोई संभावना नहीं होती, कभी भी व्यक्ति का लॉस नहीं होता है। अगर हमने एक दिन भी भगवान का नाम लिया है तो वो एक एक दिन का नाम जो है वो हमारे परमानेंट अकाउंट में है। अगर हमने एक बार भी भगवान का नाम लिया है तो वो भी परमानेंट अकाउंट में, इसलिए भगवान बताते हैं कि इसमें कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति कल्याण कार्य में लगा है वो कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। न ही कल्याण कश्चित दुर्गतिम तादि गच्छति, जो व्यक्ति कल्याण के कार्य में लगा हुआ है वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसी थीम में फिर भगवान बता रहे हैं कि जो असफल योगी होते हैं वो ऊपर के लोकों में कई वर्षों तक भोग करने के बाद सदाचारी पुरुषों के घर में या धनवानों के घर में जन्म लेते हैं। और फिर 42 वर्ष में भगवान ने बताया था कि अगर कोई बहुत लंबे समय के तक योग करने के बाद फिर फेल होते हैं तो फिर वो योगियों के घर में जन्म लेते हैं। तो दो प्रकार से डिविएशन भगवान ने बताया, एक तो किसी का पतन हो जाता है बहुत जल्दी और किसी का पतन एकदम लास्ट लास्ट तक, जैसे किसी ने 10% भक्ति किया है और वो उसका पतन हो गया तो उसका क्या होगा, और किसी ने 90-95% तक किया है तो उसका क्या होगा। तो जिसने शुरू में भक्ति का त्याग कर दिया है, पतन हो गया है, वो सदाचारी लोगों के घर में या धनी परिवार में जन्म लेता है, और जिसने बहुत लंबे समय तक 90-95% तक कंप्लीट किया है वो योगियों के घर में जन्म लेता है। और ऐसा जन्म इस संसार में बहुत दुर्लभ है, वो भगवान यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि इस प्रकार का जन्म बहुत दुर्लभ पाया जाता है इस संसार में। सेकेंड वाला जो जन्म है इट्स वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड। और क्यों भगवान फिर बताते हैं, तत्वतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते चतो भूय संसिद्ध कुरु नंदना। ये जन्म इसलिए दुर्लभ है क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति इस जन्म को प्राप्त करता है तो बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहकम, पिछले देह में उसने जो कार्य किया है, पिछले शरीर में उसने जो भक्ति की है, जो आध्यात्मिक कार्य किया है, उसको वो तुरंत याद कर लेता है, उसकी चेतना में जागृति के कारण वो इसको तुरंत याद कर लेता है। और यतते चतो भूय, तो जहां तक उसने पिछले देह में प्रयास किया था वहां से वो प्रारंभ करता है और फिर सिद्धि को प्राप्त करता है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो ये हम कई बार देखते भी हैं, कुछ कुछ भक्त भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो हम देखते हैं बहुत कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं, हमें लगता है कि इतने तेजी से ये लोग कैसे एडवांस कर रहे हैं। तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि वो पिछले जन्म में कुछ भक्ति का प्रयास किए थे परंतु भक्ति संपूर्ण नहीं कर पाए थे, इसलिए इस जन्म में उस भक्ति को कंटिन्यू करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कई बार छोटे छोटे बच्चे भी भक्ति में बहुत आगे होते हैं, यूट्यूब वीडियो में भी हम देखते हैं कि कुछ कुछ वीडियो जैसे आते हैं कि छोटे बच्चे को पूरी भगवद गीता याद है, उसको वेद याद है, तो ऐसे कुछ ये उदाहरण इसी कारण से देखने मिलते हैं क्योंकि पिछले जन्म की चेतना को वो लोग प्राप्त कर लेते हैं और उस चेतना के कारण वो जहां पे पिछले जन्म में उन्होंने एंड किया था वहां से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये भक्ति का परमानेंट नेचर है। राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्ण पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। राजा भरत के पहले इस वर्ष को इलावृत वर्ष बोला जाता था, उसके भी पहले इसको अजनाब वर्ष बोला जाता था। और राजा भरत ने कम आयु में आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास लिया था परंतु सफल नहीं हो पाए थे, और उसके अगले जन्म में फिर वो एक मृग के जैसे जन्म लिया था, उसके अगले जन्म में वो ब्राह्मण बने थे, और जब तीसरा जन्म लिया था तो तीसरे जन्म में वो जन्म से ही शुद्ध भक्त थे। तो उनका उदाहरण इसमें आता है कि जड़ भरत कहलाए क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते नहीं थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। राजा रघुगण और जड़ भरत का जो संवाद है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में 10-11 अध्याय से अगले 2-3 अध्याय तक डिस्क्रिप्शन है। राजा रघुगण भगवान कपिल के आश्रम में जाते रहते हैं और जाते जाते वो जड़ भरत से मिलते हैं और अज्ञानतावश जड़ भरत को वो अपने अपने जो पालकी है उसको पालकी को उठाने में लगा देते हैं। परंतु जड़ भरत बहुत एडवांस भक्त थे तो रास्ते में जब चींटियां या कुछ जीव जंतु आते थे छोटे छोटे तो उनको बचाने के लिए वो अपने पैर को अलग जगह पर रखते थे जिसके कारण से पालकी ठीक तरीके से नहीं चल रही थी, पालकी में धीरे धीरे कई बार परेशानी होती थी। तो राजा नाराज होकर जड़ भरत के ऊपर डांटते हैं, और फिर उसके जवाब में जड़ भरत फिर जब उनको आंसर देते हैं तो राजा को पता चलता है कि जड़ भरत कितने महान व्यक्ति हैं। और फिर उसके बाद फिर जड़ भरत से प्रश्न पूछते हैं राजा रघुगण, कई प्रश्न पूछते हैं और बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं उसमें। एक चैप्टर है फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, उसमें पूरे भौतिक भौतिक सुख के बारे में जड़ भरत ने डिस्क्राइब किया है। और कई दो या तीन चैप्टर इस प्रकार से हैं जहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन है, बहुत डीप फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन है वो। जब हमने भागवत प्रवाह कोर्स किया था तो वो डिस्क्रिप्शन हमने कुछ लिमिट तक डिस्कस किया था, उसके ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट श्लोक में पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व अभ्यासेन तेन एव ह्रियते, ह्रियते का मतलब होता है आकर्षित, क्योंकि उसने पहले से ही पिछले जन्म में अभ्यास किया है, इसलिए वो अवसोपि सह, अवसह मतलब स्वतः, नेचुरली नेचुरली वो पिछले जन्म का जो अभ्यास है उसकी तरफ से आकर्षित होते हैं। और जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्षते, वो नहीं चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की तरफ आकर्षित होते हैं। और ऐसे जिज्ञासु योगी फिर शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, अतिवर्तते का मतलब शास्त्रों के जो अनुष्ठान है तीन गुण है उसको पार कर जाते हैं, उसको उल्लंघन कर जाते हैं। अतिवर्तते, अतिवर्तन मतलब इंग्लिश में उसको अतिक्रमण, हिंदी में अतिक्रमण और अतिवर्तन सेम चीज कहलाता है, उल्लंघन बोला जाता है, उसी को बियॉन्ड के सेंस में भी मानते हैं। तो ऐसे योगी के घर में जिसका जन्म होता है, चूंकि उसने पिछले जन्म में योग किया है इसलिए नेचुरली वो आकर्षित होता है, और योग की क्रियाओं को करके वो शास्त्र के अनुष्ठानों के ऊपर पहुंच जाता है। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट रहते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद 33 श्लोक सातवें अध्याय, 33 अध्याय सातवें श्लोक में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या की गई है। ये सेक्शन तीसरे स्कंद का 33वां श्लोक भगवान कपिल देव के सेक्शन का अंतिम है, जब कपिल देव की माँ देवहूति भगवत धाम में जाती है, वहां पे श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को बताते हैं। अहो बतस्व पचोतो गरीयांच यच्छि हुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवस्सस्नुगार्या ब्रह्मानुचु नाम गृणन्ति येते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। जो लोग भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, जिसकी जीव के अगले भाग में आपका नाम आता है, दैट मीन्स जो भगवान के नाम का जप करते हैं, स्वपचो तो गरीयान, भले वो किसी भी घर में जन्म लिया, चांडाल वर्णाश्रम पद्धति से बाहर के लोग जो कि वर्णाश्रम में नहीं रहते हैं उनको, उनके बारे में बोला जाता है, तो ऐसे लोग भी भगवान के नाम का जप करते हैं तो गरीयान, गरीयान मतलब वो बहुत श्रेष्ठ कहलाते हैं, बहुत तेजी से प्रगति करते हैं। और ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने, ऐसे जपकर्ता ने सारे जप तप तपस्याएं कर चुके हैं और सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। तो कोई अगर नाम का जप कर रहा है तो उसने ये सब कुछ कर लिया है। दैट मीन्स अगर इस तरह से हम देखें तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो भी भक्त आए हैं वो ये सब कुछ करके आए, कोई चाय माला भी कर रहा है तो उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे तप कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थ स्थान में स्नान कर लिया, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमने सब कुछ ये कर लिया, परंतु उसको हमें घमंड के जैसा नहीं लेना चाहिए कि हम सब कुछ कर चुके हैं। ये ऐसा डिस्क्रिप्शन बताया गया है जिसमें हमारा फॉर्च्यून, भक्ति योग कितना ऊंचा वस्तु है, भक्ति योग जो कर रहे हैं वो कितने ऊंचे लोग हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि अभी तक हम भक्ति योग कर रहे हैं, अभी हम भक्ति योग का प्रयास कर रहे हैं। पवित्र नाम का जप हमें पता ही नहीं चलता पवित्र नाम का जप कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि नाम के जप में तो हम सोते रहते हैं, कैसे कैसे करके नाम का जप करते हैं। तो अभी हमें इस अवस्था में पहुंचना है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें पवित्र नाम मिल चुका है, परंतु नाम के प्रति हम इतने सजग नहीं है। नाम को हम बहुत चीप तरीके से लेते हैं, नाम लेते भी जिस समय भी हम सिंसियर नहीं होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में अगर हम देखें तो अगर उनके फाइनल इंस्ट्रक्शन देखें तो उन्होंने केवल दो ही चीजें बताई हैं कि नाम का जप करो और अपराधों को खत्म करो। जब नाम अपराध, सेवा अपराध, इनको खत्म करके नाम का जप करेंगे तो आपको शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। मैं जस्ट एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, उसमें कुछ कुछ कोटेशन है इससे रिलेटेड। उसको कल मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आया था, वेरी नाइस स्टेटमेंट।
प्रभु जी,
यस,
ये सेवा अपराध मतलब आपने अभी बोला सेवा अपराध खत्म करना।
भगवान की सेवा में कुछ कुछ अपराध होते हैं, वो सेवा अपराध कहलाते हैं। 32 प्रकार के अपराध होते हैं इस प्रकार से। जैसे मैं जस्ट शेयर करता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। ये डॉक्यूमेंट हरिनाम चिंतामणि से है, टचस्टोन ऑफ द होली नेम। तो इसमें हरिनाम चिंतामणि का पहला चैप्टर का पीपीटी है, पीडीएफ फाइल है। इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि कुछ कुछ कोटेशंस हैं चैतन्य चरितामृत से नाम के ऊपर, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला दिया है, मान नाम का जप करें और 10 अपराध से अपने आप को मुक्त करें। कई बार हम सोचते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े सेमिनार की कैसे अटेंटिव जप करना है, कैसे हम डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें, परंतु अमेजिंगली जहां भी नाम का डिस्क्रिप्शन आता है आचार्यों के द्वारा या चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, वहां पे ये सब टेक्निक्स बहुत कम दी जाती है। चाहे भक्ति विनोद ठाकुर देखें, चाहे चैतन्य महाप्रभु देखें, उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है, होली नेम चैंट करना और 10 ऑफेंस को अवॉइड करना। इनफैक्ट हरिनाम चिंतामणि पुस्तक, जिसका ये पीडीएफ है, इसमें आप देखेंगे शुरू के 2-3 अध्याय में नाम का नाम विचार है, शुद्ध नाम क्या कहलाता है, नाम अपराध क्या कहलाता है, नामाभास क्या कहलाता है। उसके बाद अगले 10 अध्याय में यही डिस्क्राइब किया गया है कि 10 अपराध क्या है और उनसे कैसे कैसे बचना चाहिए। जैसे ये चैतन्य महाप्रभु नाम अपराध के बारे में बता रहे हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्म तक भी अगर कोई श्रवण कीर्तन करता है परंतु नाम अपराध खत्म करने का प्रयास नहीं करता है, तो भले ही कितने ही प्रयास करे वो कई जन्मों तक करने का, परंतु उसको कृष्ण के चरणों में प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि भगवान का नाम ऑब्लाइज नहीं है रिजल्ट देने के लिए, इसलिए जब तक हम नाम अपराध से मुक्त होकर नाम नहीं करेंगे तब तक नाम का पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा। कृष्ण नाम करे अपराधे विचार, कृष्ण बोली ले अपराधे ना होए विकार। भगवान कृष्ण का नाम जो है उसमें अपराध का विचार होता है, नाम अपराध का विचार होता है। भगवान कृष्ण का नाम जो हम करते हैं तो उसमें ऑफेंसेस कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए जो भगवान कृष्ण का नाम लेता है परंतु साथ साथ अपराध करता रहता है उसको विकार, उसको भक्ति के एडवांस अवस्था प्राप्त नहीं होती है। अपराध नहीं सदा लाओ कृष्ण नाम, एत बलि प्रभु आइला सर्वभौम स्थान। ये मध्य लीला में से है, ये वो सेक्शन है जब चैतन्य महाप्रभु अमोक को डिलीवर करते हैं, सर्वम भट्टाचार्य के दामाद को। तो वहां भी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण का नाम लो और अपराध नहीं करो, नाम का अपराध मत करो, सेवा अपराध मत करो। अगर आप ये कार्य करेंगे तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। सारे भजन के माध्यमों में सबसे श्रेष्ठ है नवविधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। और नवविधा भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये नवविधा भक्ति है। और नवविधा भक्ति अगर कोई पालन करता है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण प्रेम और स्वयं कृष्ण की उनको प्राप्ति होती है, इतनी शक्ति है। परंतु इस नवविधा भक्ति में भी सबसे इंपॉर्टेंट है तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम नवीले पाए प्रेम धन। नवधा भक्ति के प्रोसेस में भी सबसे इम्पोर्टेंट है नाम संकीर्तन। अगर कोई नाम संकीर्तन बिना अपराध के लेता है, बिना अपराध के नाम संकीर्तन लेता है तो उसको प्रेम धन प्राप्त होता है। ये बहुत सारे ऐसे चैतन्य चरितामृत में से कोटेशन है, अपराध छाड़ी कर कृष्ण संकीर्तन, अचिराध पावे तभी कृष्ण चरण। अगर कोई नाम अपराध को छोड़ के कृष्ण संकीर्तन करेगा तो उसको बहुत जल्दी कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। तो इससे पता चलता है कि इसमें आगे ये भी बताया है कि हरिनाम चिंतामणि पुस्तक कैसे लिखी गई। 3 अध्याय में नाम का विचार है, उसके बाद 10 अध्याय हैं जिसमें एक एक अपराध को आइडेंटिफाई करना, अवॉइड करना और रेक्टिफाई करना, और उसके बाद आइडेंटिफाई अवॉइड एंड रेक्टिफाई सेवा अपराध, और उसके बाद भगवान से नाम को स्थापित करना, भगवान से संबंध स्थापित करना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट बुक, कभी अगर हमें समय मिलेगा तो ये बुक करेंगे, फिलहाल तो नहीं क्योंकि उसमें टोटल 16 चैप्टर है। अगर एक हफ्ते में एक चैप्टर करेंगे तो भी 16 क्लासेस हरिनाम चिंतामणि की पुस्तक को कंप्लीट करने में लगेगा। इवेंचुअली जब समय आएगा तो हम करेंगे, बट ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है जो हम डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड, कि नाम जप में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें सिंपल है, चैंट करना है और अपराधों को नलिफाई करना है, अपराधों को खत्म करना है, तभी ऐसा होगा कि हम शुद्ध नाम तक पहुंचेंगे, अन्यथा लगातार नाम करने के बाद भी हम शुद्ध नाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो भी शास्त्र में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ऐसा जो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं कि चांडालों के घर में जन्म लेके भी जो पवित्र नाम का जप करते हैं वो सब कुछ कर चुके हैं, ये ऐसे लोगों के लिए किया बोला जा रहा है जो कि नाम के जप करते समय अपराध नहीं करते। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करता। तो जो निरंतर नाम जप करता है उसको यह समझा जाता है कि उसने पिछले जन्म में सारे कर्म कांडों को पूरा कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट में भगवान बताते हैं, प्रयत्नादिवत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विसा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। ऐसा भक्त प्रयत्न करता है और प्रयत्न करते करते समशुद्ध किल विसा सारे पापों से मुक्त हो जाता है, सारे मल से मुक्त हो जाता है, और अनेक जन्म तक प्रयास करने के बाद वो परम गति को प्राप्त करता है। जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में हुई है। येषां तु अंतर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। ये 7वें अध्याय का लास्ट लास्ट का श्लोक है, इसमें भगवान डिस्क्राइब करते हैं, इसके पहले वाले श्लोक में डिस्क्राइब करते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत। व्यक्ति को इस संसार की ड्यूनिटी से पार करना चाहिए, जो द्वंद्व है उससे पार करना चाहिए। और इस श्लोक में बताते हैं कि जिन्होंने कई जन्मों तक पुण्य कार्य किए हैं और उसके कारण उनके कलमस खत्म हो गए और द्वंद्व से वो लोग मुक्त हो गए, ऐसे लोग मेरी दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते हैं। दैट मीन्स जो भक्ति में डिटरमाइंड तरीके से लगे हुए हैं उनके सारे पाप कर्म खत्म हो चुके हैं और पुण्य कर्मों का उदय हो चुका है। इसके बाद लास्ट 2 श्लोक हैं जिसके बाद ये अध्याय कंप्लीट होगा, और इन लास्ट श्लोकों में भगवान कैटेगराइजेशन कर रहे हैं कि कौन सबसे बड़े योगी है, कौन सबसे बड़ा योगी कहलाता है। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्यो पिमतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान बता रहे हैं बहुत सारे तपस्वियों से भी ज्यादा अच्छा होता है योगी, ज्ञानियों से भी अच्छा होता है योगी, कर्मियों से भी अच्छा होता है योगी, इसलिए हे अर्जुन योगी बनना चाहिए। यहाँ पे योगी शब्द का मतलब है कि योगी जो भगवत चेतना में उठने का प्रयास कर रहा है, भगवत चेतना में आगे जाने का प्रयास कर रहा है। इस योगी शब्द को हमें पॉलिटिकल सेंस में नहीं लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ या इस प्रकार से उनका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि योगी शब्द अपने आप में स्पेसिफिक शब्द है जो कि भगवान से संबंध प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आइडियली देखा जाए तो योगी को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, परंतु कलयुग में कुछ भी पॉसिबल है। कलयुग में कुछ बोला नहीं जा सकता कब क्या होगा, परंतु सामान्यतः यहाँ पे जो योगी की बात कर रही है, योगी का मतलब जो इस संसार की वस्तुओं में लिप्त नहीं होता है। पॉलिटिक्स में व्यक्ति अगर जाता है तो क्षत्रियों का स्थान है पॉलिटिक्स में जाना, सन्यासियों का योगियों का स्थान पॉलिटिक्स में जाना नहीं। जैसे पहले भी बहुत सारे पॉलिटिक्स, उमा भारती, ये सभी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पर्सन थे, हालांकि वो एक अलग अपसंप्रदाय के समान है, परंतु वैदिक शास्त्र इसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि किसी सन्यासी को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। अगर किसी को जाना भी है तो अपने सैफ्रॉन कपड़े को उतार के क्षत्रिय के वेश में जाना चाहिए, क्योंकि सैफ्रॉन कपड़ा जो है, जो गेरुआ कपड़ा है, वो त्याग का प्रतीक होता है, और त्याग का प्रतीक होने के बाद उस कपड़े को पहन के हम फिर क्षत्रिय के जैसे कार्य नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो योगी है वो दिव्य व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया है कि ऐसा योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मियों से बढ़कर होता है, इसलिए हे अर्जुन आपको योगी बनना चाहिए। प्रभुपाद जी भी यही समझा रहे हैं, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है, जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, परमेश्वर के प्रति समर्पण हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है, सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो यहाँ पे इस श्लोक में अगर देखें ध्यान से तो इसमें भक्ति योग का चर्चा नहीं है। जो चर्चा किया गया है, तपस्वी से योगी बढ़ा है, ज्ञानी से भी बड़ा है, कर्मी से भी बड़ा है, भक्ति से बड़ा है, भक्त से बड़ा है, ये सब नहीं लिखा है। क्लियरली श्लोक में लिखा हुआ है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने मन से भक्ति योग को डाला है गीता के अंदर, उनको इस पता होना चाहिए कि गीता बहुत क्लियरली भक्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि भगवान ओरिजिनली भक्ति के बारे में बताते हैं, तो कोई आचार्य को अलग से कुछ इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। या भगवद गीता अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भगवद गीता भक्ति योग को ग्लोरीफाई करती है। इसमें भक्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ, इसलिए अगले श्लोक में आता है कि सारे योगियों में सबसे बड़ा योगी होता है जो भक्ति करता है। अगला श्लोक भगवद गीता का वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोक है, भगवद गीता के टॉप 10 श्लोकों में आता है, योगी नाम अपि सर्वेषां। तो इस श्लोक के तात्पर्य का मतलब है कि भक्ति योग के बिना तपस्या भी संपूर्ण नहीं होता है, और आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, और भगवान को समर्पित किए बिना हमारा ज्ञान भी अपूर्ण है। अगर भगवान के लिए हम अपना ज्ञान उपयोग नहीं करते हैं तो ज्ञान भी पूरा नहीं होता है, और कर्म भी भगवान की भक्ति के बिना टाइम वेस्ट है। अगर कर्म भगवान में उपयोग नहीं करते हैं, कर्म योग के जैसा उपयोग नहीं करते हैं, तो वो भी टाइम का वेस्ट है। इसलिए हे अर्जुन हमें तुम सभी प्रकार से योगी बनो। इसके बाद सभी योगियों में सबसे बड़ा योगी होता है भगवत भक्त। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में से योगी नाम अपि सर्वेषां, समस्त योगियों में से मद्गते नान्तरात्मना, ऐसा व्यक्ति जो मेरे परायण होता है, वो अंतरात्मना अपने अंदर श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है, समे युक्ततमो मतः, वो मेरे ओपिनियन में सबसे ऊंचा योगी माना जाता है। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सभी में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इस श्लोक में भजते शब्द आता है। भजते मतलब भजन करना। भजते और पूजते दो अलग अलग शब्द है। भजन और पूजन, पूजन मतलब वर्शिप करना और भजन मतलब भक्ति करना। तो भजन शब्द इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते शब्द भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले की तो कोई तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने पर वह नीचे गिर जाता है। तो पूजा अलग बात है। पूजा मतलब सम्मान करना, सम्मान का योग्य व्यक्ति को दिखाना, परंतु प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सेवा एक अलग वस्तु है। भागवत में बताया है स्थानाद भ्रष्ट पतंति अधा, 11वें स्कंद का श्लोक है ये। येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टः पतन्ति अधः। येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं, भगवान जो आत्मप्रभम मतलब आदि भगवान है, उनको जो न भजन्ति, जो उनको भजन नहीं करता है, जो उनकी सेवा नहीं करता है, अवजानन्ति जो उनका अपमान करता है, अवजानन्ति का एक और मीनिंग होता है नेग्लेक्ट करता है, ऐसे व्यक्ति को स्थानाद् भ्रष्टः, उसका अपने स्थान से पतन, अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है, मतलब डिविएट हो जाता है और पतंति अधा और नीचे गिर जाता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता है या अपने कर्तव्य में शिथिलता होता है, वह अपने स्थान से भ्रष्ट होके पतित हो जाता है। क्लियरली क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दैट मीन्स जो भक्त नहीं है वो पतित अवस्था में है। इस श्लोक में भी भजंती शब्द आया है। भागवत के इस श्लोक में भी भजंती आया है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि पूजन शब्द का उपयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवद गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनिमाश्रिता परम भाव अजानंतो ममाव्यय मनुत्तमम। केवल मूर्ख और धूर्त लोग भगवान का उपहास करते हैं। अवजानंती मतलब जो उनको जानते नहीं है या नेग्लेक्ट करते हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है तो वह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होती है तो उसको अष्टांग योग बोलते हैं। ये एक्चुअली योगा लैडर है। सबसे नीचे कर्म योग है, निष्काम कर्म योग। और निष्काम कर्म योग में जब व्यक्ति शास्त्र अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, उसमें वैराग्य की वृद्धि होती है, तो वो ज्ञान अवस्था में पहुंचता है, ज्ञान योग में। और ज्ञान के द्वारा जब वो परमेश्वर साक्षात्कार करने का प्रयास करता है तो वो प्राणायाम और अष्टांग योग का सहारा लेता है, तो उस योग को अष्टांग योग बोला जाता है। और अष्टांग योग की पद्धति में जब व्यक्ति अंतिम स्टेज में पहुंचता है, समाधि की स्थिति में, और हृदय में भगवान के दर्शन करता है, तब वह भगवान को पहचानता है। उसके बाद वह भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है। तो कर्म योग के बाद ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग उसके बाद भक्ति योग। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। अभी अगर इस योग की पद्धति में कोई जा रहे हैं, अगर कोई भक्ति योग तक पहुंच गया तो ठीक है, अगर कोई भक्ति योग तक नहीं पहुंचा, बीच में रुक गया, तो फिर उस योग के नाम से बुलाया जाता है। जैसे कोई कर्म योग पे ही स्थित है, उसके ऊपर नहीं पहुंचा, तो उसको कर्म योगी बोला जाएगा, कोई ध्यान योगी बोला जाएगा, हठ योगी बोला जाएगा, परंतु अगर वो लास्ट तक पहुंच गया तो फिर भक्ति योगी कहलाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिन्न रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जाती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। तो पिछला पूरा पैराग्राफ श्री ब्रह्म संहिता के श्लोकों से लिया गया है, भगवान के श्याम सुंदर भगवान के रूप का वर्णन और भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन, जो कि ब्रह्म संहिता से लिया गया है। और श्वेताश्वत उपनिषद का ये श्लोक कोट करते हैं, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथितो हि अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। इसका मतलब है यस्य देवे पराभक्ति, जिसमें भगवान के प्रति भक्ति होती है, यथा देवे तथा गुरु, जितना कृष्ण के प्रति श्रद्धा होती है उतनी गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। ऐसे लोगों के लिए तस्यैते कथितो हि अर्थ, ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है, कथित मतलब शास्त्रों में उनके द्वारा बोला जाता है कि प्रकाशन्ते महात्मनः, उनके अंदर शास्त्रों का ज्ञान ऑटोमेटिकली प्रकाशित हो जाता है। तो भगवान और गुरु में जिसकी श्रद्धा होती है उनके हृदय में वैदिक ज्ञान का संपूर्ण प्रकाश हो जाता है। इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं, आप लोगों ने शायद वो एक पुस्तक है जिसमें कि कृष्ण भक्तों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो कि रसिया में सोवियत संघ में जिन्होंने भक्ति चालू किया था और वहां पे बैन था इस्कॉन संस्था, तो उनको जेल में डाल दिया गया था भक्ति करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जेल में डाल दिया गया था। बहुत अच्छी पुस्तक है वो, सॉल्टेड ब्रेड, उस पुस्तक का नाम सॉल्टेड ब्रेड है। तो उस पुस्तक में एक इंसिडेंट आता है कि जेल में वो लोग गौर पूर्णिमा मनाना चाहते हैं, जेल में गौर पूर्णिमा मनाने का प्रयास करते हैं वो लोग। तो गौर पूर्णिमा आती है तो वो लोग फिर भगवान की लीलाएं बताते हैं, पर बाद में वो बताते हैं कि हमने तो वो सब पुस्तकें पढ़ी नहीं थी, तो भगवान की लीलाएं हमारे मुंह से कैसे निकल रही थी। केवल भगवान की सेवा करने के लिए वो लोग इतना मेहनत किए थे, उनको इतनी मार पड़ती थी, जेल में मारा जाता था कि आप क्यों भगवद गीता का प्रचार कर रहे हो। तो भगवान की सेवा करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतना ज्यादा दुख सहा था उसके कारण से, और गुरु की कृपा और भगवान की कृपा के कारण उन्होंने बिना पुस्तक पढ़े भी उनको भगवान की लीलाएं पता चल गई थी। वो खुद ही बताते हैं कि हम वहां पे क्लास देते थे भगवान की लीलाओं, कृष्ण की लीलाओं को बताते थे, परंतु हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, हम तो नए नए भक्त थे सर। और वो लोग ऐसे भी नहीं थे कि भारतीय लोग हैं कि उन्होंने बचपन से कृष्ण के बारे में सुना है, सभी रसिया के थे, उनको कृष्ण का नाम ही कुछ महीने पहले पता चला था। तो जिनके हृदय में भगवान और गुरु में श्रद्धा होती है वैदिक ज्ञान उनके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। इसके बाद आगे बता रहे हैं, भक्ति रस्य भजनम तदेह तदेहम उत्तोपाधि नैराश्येनामुस्मिन मनः कल्पन कल्पनमेतदेव नैष्कर्म्यम। भक्ति का मीनिंग बताया है ये गोपाल तपनी उपनिषद से, भक्ति जो है वो नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्य मतलब ऐसा कार्य जिसका कोई कर्म फल नहीं होता, उसको नैष्कर्म्य बोलते हैं। और तद इह अमुत उपाधि नैरस्य अमुस्मिन, ये भक्ति का डेफिनेशन है, ऐसा भजन जिसमें थोड़ा सा भी हमारे जो उपाधि जो डेजिग्नेशन है उसका कोई प्रस्ताव नहीं होता है, कोई डेजिग्नेशन नहीं होता है और कोई भी भौतिक लाभ या भौतिक प्रभाव नहीं होता है। ऐसी प्रवृत्ति से जब भक्त मुक्त हो जाता है तो उसको भक्ति बोला जाता है, उसी को नैष्कर्म में बोला जाता है। ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिनसे योग की परम समसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के छठवें अध्याय का तात्पर्य समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीक से हम सातवां अध्याय चालू करेंगे। अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 तक भगवत गीता का भक्ति योग का सेक्शन आता है, तो भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन चालू होने वाला है नेक्स्ट वीक से। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। दिव्यराज को आपका एक प्रश्न था, वो अभी पूछ सकते हैं, जो आपने मुझे चैट में भेजा था। तीसरे अध्याय का प्रश्न था ना, वो तीसरे अध्याय का कौन सा श्लोक था वो मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है तो अभी पूछ सकते हैं।
हाँ मैं बताता हूँ।
किसी और को प्रश्न पूछना है उसके बीच में पूछ सकते हैं अनम्यूट करके।
हाँ, 3.35।
एक मिनट में श्लोक निकालता हूँ। अच्छा 3.35 4.35। आप श्लोक पढ़िए, क्या प्रश्न है?
इसमें मेरे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है।
ओके मेरे पास आ गया, श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात्, यही वाला श्लोक है ना?
इट इज फार बेटर। हाँ श्रेया श्रेया सर। हाँ वही। इसमें डेंजरस,
अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अपने कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। क्या प्रश्न है
इसमें? ये डेंजरस वर्ड का मतलब क्या है? जब भगवान बोले डेंजरस है, और अपने काम करते करते डिस्ट्रक्शन हो जाना दूसरे काम से बेटर क्यों होंगे, और भगवान इसमें रीजनिंग क्या देते हैं इसके लिए?
भगवान इसमें रीजनिंग देते हैं कि जो हमारी क्रियाकलाप या हमारी मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर जो कर्म हमें दिया गया है वो ही हम कर्म करेंगे तो हमारे लिए बेटर है। अगर हम कोई दूसरा कर्म करेंगे जो कि हमारे स्वभाव से मैच नहीं करता है तो उस कर्म से कोई फायदा नहीं मिलेगा और समाज में भी डिस्टर्बेंस पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको युद्ध करना चाहिए, आपको यज्ञ नहीं करना चाहिए। अर्जुन सोच रहे हैं कि ब्राह्मण बन सकते हैं, आपने ये प्रश्न भी किया था ना, दिव्य ज्ञान का डिस्क्रिप्शन है या सेक्रीफाइसेस का डिस्क्रिप्शन है, तो सेक्रीफाइस करने से फायदा होता है, अर्जुन भी कर सकते हैं, परंतु अर्जुन के लिए सेक्रीफाइस क्या है? यज्ञ में बैठ के सेक्रीफाइस करना उनके लिए सेक्रीफाइस नहीं है। युद्ध भूमि में अधर्म को खत्म करना उनके लिए सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब हमें समझना होगा कि हम अपनी किस चीज को भगवान के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस बोला जाता है। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो अधर्म को खत्म करें और अपने शौर्य को भगवान को प्रदान करें, अपने शौर्य के द्वारा भगवान की सेवा करें, वो उनके लिए सेक्रीफाइस है। ब्राह्मणों के लिए सेक्रीफाइस होता है अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित करें, वो उनके लिए सेक्रीफाइस कहलाता है। तो अर्जुन जो है वो क्षत्रिय के कैटेगरी में है, उनको अपने शारीरिक ऐश्वर्य और अपने स्किल्स के द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप वो करिए, आप दूसरा कार्य मत करिए, क्योंकि व्यक्ति का मानसिक नेचर जो है वो इतनी जल्दी नहीं बदलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें अगर हमारा पढ़ने का इतना एटीट्यूड नहीं है और हमें खाली समय में किताब दे दी जाए कि आप 5 घंटे किताब पढ़ो, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हम पढ़ना नहीं समझते। तो जो व्यक्ति का नेचर नहीं है वो नेचर में पूरी तरह से नहीं ढल सकता है, इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि आपका जो नेचर है उसी हिसाब से आपको सेवा करनी चाहिए, उसको इम्परफेक्ट तरीके से करना ज्यादा अच्छा है बजाय कि दूसरे की चीज को परफेक्ट तरीके से करना। ओके समझ में आया?
हाँ, तो मतलब हम उसको अगर इम्परफेक्ट तरीके से भी करेंगे तो जो भगवान इसी चैप्टर में जो लाभ बताते हैं वो मिलेंगे, तो ट्रांसेंडेंस की बात करते हैं
वो हमें मिलेगा,
मुक्त रहेंगे।
हाँ
अच्छा, और मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था तो फिर इसमें मैंने जब दूसरी बार पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि 3.6 से जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आता है भगवान प्रिटेंडर की डेफिनेशन बताते हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था, ये पता नहीं आप वेरीफाई कर सकते सही है नहीं, कि ये जो प्रिटेंडर है भगवान इस वर्ष के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जैसे तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, लेकिन अगर तुम ब्राह्मण वाले काम करोगे तो तुम प्रिटेंडर कहलाओगे, तो इस वजह से भी व्यक्ति को अपना जो साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से धर्म है उसको नहीं छोड़ना चाहिए वरना वो प्रिटेंडर बोला जाएगा।
ऐसा बोल सकते हैं, भगवान उसमें ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कोई हमारे मन में कुछ कार्य आ रहा है, करने की इच्छा है, परंतु हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं और मन से वो कार्य कर रहे हैं, मन से उस कार्य की तरफ सोच रहे हैं। तो ये एक तरीके का धोखा देना जैसा है, कर्म इंद्रियों को रोकना और मन में स्मरण करना। तो भगवान ने लिखा भी है ना कि मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, कर्म इंद्रियों को वश में करता है, परंतु मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है। व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। इसमें ऐसे व्यक्ति नहीं आते हैं जो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं और कभी कभी अनर्थ के कारण उनको परेशानी होती है। कई जब हम इसको पढ़ते हैं तो डर जाते हैं कि हम सभी लोग मिथ्याचारी की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि हम अभी शुद्ध तो हुए नहीं है, मन में कुछ गलत विचार चलते रहते हैं, परंतु हम बाहर से सब बताते हैं कि हम अच्छे भक्त हैं, परंतु अंदर से तो हमें पता है कि सबकी क्या हालत है। तो इसमें मिथ्याचार तब तक नहीं आएगा जब तक हम जानबूझ के उस पाप में नहीं जाते हैं। अगर हम उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं और कभी कभी हम नहीं रोक पाते हैं तो फिर मिथ्याचारी नहीं कहलाएंगे, अन्यथा मिथ्याचारी कहलाएंगे। इसलिए इस श्लोक से डरना भी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हम अंदर से कुछ करें और फिर बाहर से हम लोगों को बताएं कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, तब फिर वो भक्ति नहीं कहलाएगा, मिथ्याचार कहलाएगा। क्योंकि इंद्रिय विषयों का जानबूझ के चिंतन करना अपने आप में पाप का कार्य होता है। ओके
तो इस वर्ष का इसके साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है?
नहीं, उसका उस वर्ष का दूसरा लिंक है, पिछले के श्लोकों के साथ उसका लिंक है।
अच्छा
ओके, तो नेक्स्ट वीक हम करेंगे। सभी लोग ऑलरेडी तैयार हो गए थे क्लास को शाम को शिफ्ट करने के लिए, जब तक एटलीस्ट गर्मी है, क्योंकि आज मैं एक दो हफ्ते से फील कर रहा हूँ कि इस क्लास में मतलब अटेंडेंस कम हो रही है, और दोपहर का समय भी है, 12 बजे का समय ऑलमोस्ट बहुत धूप का समय होता है, और शाम को 8 बजे का समय ठीक रहता है। जिस समय पे हमारा कल क्लास हुआ था उस समय पे क्लास करेंगे तो संडे को 8 बजे कर सकते हैं। ओके, एक और प्रश्न है, परमात्मा का क्या स्वरूप है? जो परमात्मा की पूजा करते हैं क्या वो भगवत धाम जाते हैं क्या, और अगर नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते? परमात्मा का क्या स्वरूप है ये जानने के लिए कम से कम 1,00,000 साल तपस्या करनी पड़ती है, इतनी आसानी से आपको कैसे बताऊंगा। ठीक है, भागवतम पढ़ेंगे, सेकंड कैंटो में आता है उसका डिस्क्रिप्शन कि परमात्मा का स्वरूप शिव दक्षाई विष्णु का स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में विष्णु जी का स्वरूप है। जो परमात्मा की पूजा करते हैं वो भगवत धाम जाते हैं, ऑब्वियसली परमात्मा की पूजा करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते? नहीं जाते हैं, परमात्मा की पूजा करने वाले भगवत धाम जाते हैं, हालांकि परमात्मा का अपना खुद का लोक नहीं होता भगवत धाम में, परंतु चूंकि परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु का स्वरूप है तो नारायण के रूप में, नारायण के लोक में जाते हैं। परमात्मा की जो पूजा करते हैं वो नारायण के लोक में जाते हैं, परमात्मा वाद। और सामान्यतः जो समाधि की अवस्था में अगर परमात्मा का स्मरण करते हैं तो फिर वो भक्त बन जाते हैं, तो फिर वो वैकुंठ लोकों में जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ओके, श्रीमद् भगवद गीता जगत गुरु से लेकर एक और प्रश्न है।
ज़ूम मीटिंग में
हाथ का ऑप्शन आता है, रिएक्शंस में जाइए, रिएक्शन में रेज हैंड ऑप्शन आएगा।
सॉरी, मैंने आपको बीच में काट दिया था।
ओके,